ठीक है, हम क्लास का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा अरिनाल हक़्क़ हक़्क़ं व अरज़ुक़ना इत्तिबाअ, व अरिनाल बातिला बातिलन व अरज़ुक़ना इज्तिनाबा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। कल सूरत अल-फलक हमने शुरू कर दी थी, तो इसी का लफ्जी तर्जुमा बा मुहावरा तर्जुमा के साथ और लफ्जी तहकीक के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। यानी तीन चीजें हम कर रहे हैं सूरत अल-फलक के अंदर, कि एक तो इसका बा मुहावरा तर्जुमा आपको बता रहे हैं, फिर उसके साथ लफ्जी तर्जुमा, और साथ साथ हर लफ्ज की एक ग्रामेटिकल रिसर्च या ग्रामेटिकल समझें तहकीक, उसको कहते हैं लफ्जी तहकीक। तो ये भी साथ साथ चल रही है। तो आयत नंबर तीन पर हम थे, और लास्ट क्वेश्चन जो कल की क्लास के अंदर किया गया था वो ये था कि ये है इजा वकबा। तो इजा का मतलब आपको बताया था जब, और वकबा का मतलब बताया था कि वो छा गया। ये फेल माजी बताया था, वकबा फेल माजी का सीगा है, टेंस है, राइट। तो सवाल यह था कि यह फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो सवाल बिल्कुल ठीक था कि वाकई है ये माजी वकबा, राइट। लेकिन इजा एक ऐसा इसम है, जब ये फेल माजी के साथ आता है ना, तो फेल माजी के मीनिंग को फ्यूचर में कर देता है, ठीक है। फेल माजी के मीनिंग को, मतलब को फ्यूचर में कर देता है। तो इजा वकबा का जब मिला के तर्जुमा करेंगे तो बनेगा जब वो छा जाए, यानी जब वो छा जाएगा या जब वो छा जाए। तो इसके अंदर ना मुस्तकबिल के मानी आ गए, ठीक है, जब वो छा जाए, ठीक है। तो ये इजा का एक अमल होता है, ठीक है, जो कि फेल माजी के ऊपर वो करता है और उसके तर्जुमे को मुस्तकबिल के मानी में डालने की कोशिश करता है, बल्कि कर देता है, डाल देता है। तो जब वो छा जाए, तो इसका तर्जुमा बना तीसरी आयत का कि और मैं, यानी पीछे से बात चल रही है आउजू, ठीक है, कि मैं पनाह मांगता हूं अंधेरी रात के शर से, मिन शर्रे गासिकिन, अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए। गासिकिन का तर्जुमा हमने किया अंधेरे से या अंधेरी रात से, एक ही बात है, ठीक है। गासिकिन का आप लोगों को सीगा क्या बताया था, कोई बता सकता है? गासिकिन जो लफ्ज है इसका टेंस क्या है या सीगा क्या है अरबी ग्रामर के अंदर? आप लोग जल्दी से लिख दें, हम आगे चलते हैं साथ साथ। चौथी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं इसम फाइल, ठीक है, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं डूअर, नहीं प्रेजेंट नहीं है, बल्कि इसम फाइल का सीगा है जिसको इंग्लिश में डूअर कहेंगे, यानी करने वाला, ठीक है। तो अंधेरा करने वाला गासिक है, अंधेरा करने वाला। अच्छा, चौथी आयत है वमिन शर्रे नफ्फासात फिल उकद, बा मुहावरा तर्जुमा इसका बनेगा और गिरहों पर फूकने वालियों के शर से, या गिरहों में फूकने वालियों के शर से, ठीक है। इसके अंदर पहला लफ्ज है वाओ, जो कि हर्फ होता है, और इसका तर्जुमा और से करते हैं उर्दू में। मिन वही हर्फ जर है जो पिछली आयतों के अंदर भी आया, इसका तर्जुमा से करते हैं, यानी फॉर्म। शर आपको कल बता दिया था कि बुराई जो चीजें क्रिएट करती हैं या जिनके अंदर बुराई होती है, उन सबको शर कहते हैं। ये खैर की जिद है या खैर का ऑपोजिट है। नफासात ये एक नया लफ्ज है, ठीक है। तो ये लफ्ज क्या है? ये लफ्ज तो असल में नफासात है, नफासात, ठीक है। अलिफ लाम जो इसके ऊपर लगा हुआ है ना, ये इसका हिस्सा नहीं है, बल्कि अलिफ लाम अरबी के अंदर नाउंस के ऊपर लगता है कभी जरूरत के तहत, ठीक है, जरूरत के तहत नाउंस के ऊपर कभी अलिफ लाम लगाया जाता है। इसकी क्या हैसियत होती है? इसकी हैसियत ऑलमोस्ट वैसी ही होती है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर द की होती है, द टी एच ई, ठीक है। द करने से क्या होता है कि आप किसी लफ्ज को,
जिसके अंदर की एक उमूमियत होती है या इनडेफिनेटनेस होती है उसको डेफिनेट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहें हॉर्स, ठीक है, घोड़ा, ठीक है, इंग्लिश के अंदर हॉर्स कहें, अगर आप हॉर्स से पीछे द लगा दें, द हॉर्स, तो अब आप ना एक खास घोड़े की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ दुनिया के हर घोड़े की बात नहीं कर रहे कि आपने हॉर्स कह दिया तो मतलब हो गया कि ये दुनिया का हर घोड़ा मुराद है, बल्कि द हॉर्स आप अगर जुमले के अंदर कहेंगे तो इससे सुनने वाले को यह समझ में आएगा कि आप किसी खास घोड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं डेफिनेटनेस इंग्लिश के अंदर, और अरबी में इसको कहते हैं मारिफा, द बुक लाइक कुरान। हाँ, मतलब आप किसी बुक को अगर द बुक कहें तो आपकी मुराद किसी खास बुक से है, ठीक है, वरना अगर आप बुक कहें तो इसका मतलब यह है कि भाई हर चीज जो कि जिसके अंदर कागजात होते हैं और जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है तो वो बुक होती है। तो द बुक और बुक के दरमियान डेफिनेटनेस का ही फर्क है। तो अलिफ नाम अरबी के अंदर डेफिनेटनेस के लिए लगाया जाता है, इसको मारिफा कहते हैं, मारिफा, ठीक है। तो नफासात असल लफ्ज है। अब नफासात जो है ये प्लूरल है, ठीक है, ये इसम है, जाहिर है इसम है, क्योंकि अलिफ लाम सिर्फ इसम पर लग सकता है, ठीक है। ये चंद ये पॉइंट्स आप लिखते रह करें साथ साथ। तो ये जो प्लू ये जो जी जैसा आपने कहा इसम जमा है ये, तो ये प्लूरल का टेंस है, यानी इसम ये सिंगुलर नाउन नहीं है बल्कि ये प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो इसका सिंगुलर क्या है फिर? इसका सिंगुलर है नफासतुन, ठीक है, नफासतुन। आखिर में जो ता है ना वो छोटी वाली ता नहीं होती, जो कि उर्दू में तो उसको वो होती नहीं है, उर्दू में अरबी में होती है छोटी सी ता, इसको ताए मरबूता कहते हैं, मरबूता, ठीक है, या इसको ताए तारीस भी कहते हैं, ठीक है। जिसको जब हम पढ़ते हैं ना तो अगर उसके ऊपर हम सुकून कर दें तो उसको हा की तरह प्रोनाउंस किया जाता है, तो नफास नफासा भी कह सकते हैं इसको, अगर लास्ट की ता को साकिन कर दें तो नफासा कहेंगे, वरना होगी नफासतुन, ठीक है। तो ये इसकी सिंगुलर है। नफासतुन का मतलब क्या होता है? फूक मारने वाली, ठीक है, फूक मारने वाली। और नफासात क्या होता है? ये इसकी जमा हो गई, तो फूक मारने वालियां, ठीक है। इसके बाद फी, फी का मतलब होता है मे या इन, इंग्लिश का होता है ना आई एन इन। और अल उकद, इसके अंदर भी जो अलिफ लाम है ये मारिफा वाला अलिफ लाम है, ठीक है, ये इसका असल हिस्सा नहीं है, असल लफ्ज है उकद, ठीक है। उकद कहते हैं गिरह को, गिरह, नॉट, के एन ओ टी, ठीक है। जैसे उर्दू जुबान में भी हम इस्तेमाल करते हैं कि आप इस उकदे को खोलिए, यानी जब कोई मसला दरपेश होता है ना तो वो मसला जो है गोया के इतना गिरे की गिरह की शक्ल अख्तियार कर जाता है, तो मुहावरतन कहा जाता है कि जी आप इस उकदा को खोलिए, यानी आप इस गिरे को रिजॉल्व कीजिए, मसले को रिजॉल्व कीजिए। तो उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन वो उकदा के यानी आखिर में हा लगा देते हैं उसके अंदर। तो उकदा का उकद का मतलब है गिरा, नॉट। तो वमिन शर्रिन नफ्फासात फिल उकदे, के आउजू जो हुक्म दिया गया था शुरू में वो तो चल रहा है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप कहिए कि मैं पनाह मांगता हूं। जी हाँ, अलिफ नाम लगा हुआ है तो ये पहचान है कि ये इसम है, अलिफ नाम इसम की की निशानियों में से एक निशानी है, ठीक है, तो ये इसम ही है। फी हर्फ था, हर्फ जर, आई थिंक फी अब तक हमने डिस्कस नहीं किया, शायद हदीस में शायद किया था, फी हर्फ जर है। तो मैं पनाह मांगता हूं गिरों में फूकने वालियों के शर से, और कह दीजिए वाला हुक्म पीछे से कंटिन्यू हो रहा है, राइट। अच्छा, आखिरी आयत है वमिन शर्रे हासिदिन इदा हसदा, ठीक है, ये भी बड़ी सिमिलर सी आयत है, बस इसके अंदर नए अल्फाज हासिद और हसदा, ठीक है, लेकिन ये भी ऐसे अल्फाज हैं जो कि आप उर्दू के वजन से ऑलरेडी जानते हैं। हासिद कहते हैं हसद करने वाला या जिसने हसद किया, ठीक है। ये भी कौन सा सीगा हुआ?
اسم فاعل کا صیغہ ہوا, اسم فاعل یعنی ڈوئر. ٹھیک ہے, جیسے غاسق تھا اسی طرح حاسد, یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے, یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر اسم کی کون سی پہچان ہے یا کون سی نشانی ہے اس لفظ کے اندر, کوئی بتا سکتا ہے؟ اس لفظ حاسد کے اندر کون سی ایسی نشانی ہے جس سے پتا لگ رہا ہے کہ یہ اسم ہے, ورب فعل نہیں ہے نہ یہ حرف ہے؟ نہیں, ہاں تو اس کا لفظ ہے, اس کا پارٹ ہے. اس کے اندر نشانی ہے جو دال کے نیچے تنوین لگی ہوئی ہے نا, تنوین, یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ اسم ہے, کیونکہ تنوین صرف اور صرف اسم کے اوپر ہی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, ڈبل زیر, ٹھیک ہے, ڈبل زیر کو عربی کے اندر تنوین کہتے ہیں. ڈبل زیر ہو یا ڈبل فتحہ ہو یا ڈبل پیش ہو, ٹھیک ہے, جب بھی دو دفعہ لگا ہوگا نا کوئی حرکت زیر زبر پیش والی, تو اس کو تنوین کہتے ہیں, تا سے. ٹھیک ہے, تو تنوین بھی اسم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, جس طرح الف لام ایک نشانی ہے اسی طرح تنوین بھی نشانی ہے کہ یہ اسم ہے. تو حسد کہتے ہیں حسد کرنے والا. اذا حسدا, اذا یہ وہی اسم ہے جو آیت نمبر 3 میں آیا تھا, جس کا مطلب ہم نے بتایا تھا جب. ٹھیک ہے, اور حسدا یہ فعل ہے, اس کا صیغہ ہے ماضی, فعل ماضی ہے یہ, past tense, اور اس کا ترجمہ اس نے حسد کیا. ٹھیک ہے, کیا لکھا تھا آپ نے, سیس مت مت, اچھا یہ کچھ اور آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو حسدا کا مطلب ہے اس نے حسد کیا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ابھی بتایا تھا کہ اذا کے ساتھ جب فعل ماضی آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے کہ ماضی کے کا ترجمہ مستقبل میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا, اذا کے ساتھ جب وہ حسد کرے, جب وہ حسد کرے, یعنی ومن شر حاسد اذا حسدا, کہ اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی ان تمام چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کی, اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے, اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. ٹھیک ہے, تو آپ کو محاورتن ترجمہ, لفظی ترجمہ اور ساتھ ساتھ لفظی تحقیق کسی درجے میں بتائی. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے کسی درجے میں کیوں کہہ رہا ہوں, بیکاز بہت زیادہ تفصیل میں مزید ہم جا سکتے تھے, لیکن اتنی تفصیل میں ہم ابھی نہیں جائیں گے, ظاہر ہے شروعات ہے. اچھا, اب اس کی تفسیر جو ہے وہ بہت تفصیلی ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سورۃ الناس کا بھی ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں, کیونکہ جیسے آپ کو شروع میں بتایا بھی تھا کہ یہ دونوں سورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں, ایک پیر کی شکل میں, جوڑے کی شکل میں. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے ہم سورۃ الناس سے شروع نہیں کر رہے ہیں اس پارے کو, بلکہ سورۃ الفلق سے شروع کر رہے ہیں. تو ہم اس پیر کو مکمل ترجمہ کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد دونوں کی تشریح ایک ساتھ پڑھ لیں گے. اس کے اندر بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں ہیں, اور اس میں پھر ہمیں ذرا ٹائم لگے گا. اچھا, سورۃ الناس اس کے بعد ہے, اور یہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ظاہر ہے چونکہ ساتھ ہی نازل ہوئی, تو وہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی, یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی. اور مکی اور مدنی جو سورتیں ہوتی ہیں ان کی تعریف ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئیں وہ مکی ہیں, اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں, چاہے ان کا مقام کوئی بھی ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا, وقت سے ڈسیشن یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کے اندر بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کر کے کہ قل, قل کا صیغہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ فعل ہے, اور فعل کے جو چار بنیادی صیغے تھے, فعل ماضی, فعل مضارع فعل امر اور فعل نہیں, ان میں سے یہ فعل امر ہے, یعنی اس میں حکم کیا جا رہا ہے یا کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے, اس لیے یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے, تو قل کا مطلب ہوا کہہ یا آپ کہیے. ادب کے ساتھ اگر ہم, چونکہ ہم اللہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں لیکن ہم تو حکم نہیں دے رہا, تو ہم تو ادب کے ساتھ پڑھیں گے. آپ کہیے اعوذ, اس کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. یہاں پر اس کا ترجمہ حال میں کیا جائے گا, یعنی پریزنٹ ٹینس میں کیا جائے گا. اگرچہ کہ فعل مضارع کا صیغہ ہے, اس کے اندر حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کانٹیکسٹ کے حساب سے پتہ لگتا ہے, یعنی جو سیاق و سباق کہتے ہیں اردو میں, ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ, اس سے پتہ لگتا ہے کہ ترجمہ ہم حال کے اعتبار سے کریں گے یا مستقبل کے اعتبار سے کریں گے. تو یہاں پر حال کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے کہ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ پکڑتا ہوں. ٹھیک ہے, برب ناسی, بی کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ حرف جر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یعنی گرامیٹیکلی سپیکنگ عربی گرامر کے اندر اس کو حرف جر کہتے ہیں. لیکن اگر آپ قرت کے سبجیکٹ پہ بات کریں, قرت کے لیول پہ اگر بات کریں, تو یہ ایک حرف تہجی ہے, ہجہ کرنے والا حرف, جیسے الف با تا سا جیم ہا, یہ سب حروف تہجی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن حروف تہجی کی ڈسکشن ہم گرامر میں نہیں کرتے, بلکہ حروف تہجی کی ڈسکشن تجوید میں کرتے ہیں اور قرت کے سبجیکٹ میں کرتے ہیں. یہاں پر تو ہم تفسیر کے ساتھ ساتھ گرامر بھی پڑھ رہے ہیں نا, جس وجہ سے اس کو حرف جر ہی کہیں گے. با حرف جر ہے اور یہ لگا ہوا ہے رب لفظ کے ساتھ. ٹھیک ہے, رب کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, اسم کی نشانیاں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہے ہیں, تو آپ کو بتایا تھا کہ حرف جر بھی ایک نشانی ہے اسم کی, یعنی حرف جر صرف اسم سے پہلے ہی آ سکتا ہے. تو اگر آپ اس لفظ سے پہلے حرف جر دیکھیں تو یہ ایک نشانی ہے کہ یہ لفظ اسم ہے, یعنی رب کا لفظ یہ اسم ہے, فعل یا حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور رب کے معنی مفہوم وغیرہ تھوڑے بہت آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیے ہیں کہ پالنے والے کو, پرورش کرنے والے کو رب کہتے ہیں. لیکن یہاں پر رب کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے الناس. ٹھیک ہے, یہ بھی اصل میں کیا ہے, ناس, اور الف لام معرفہ کے لیے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا اصل حصہ نہیں ہے الف لام, بلکہ معرفہ کے لیے لگا ہوا ہے. اصل میں لفظ ہے ناس, اور ناس کا ترجمہ اردو زبان کے اندر ہم انسان سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی انسان کو عربی میں ناس کہتے ہیں, لیکن یہ انسانوں کی پوری جو کیٹیگری ہے نا, جنس کہتے ہیں اس کو, تو پورے یعنی تمام انسانیت کے لیے بولا جا رہا ہے الناس. تو ترجمہ کیا بنا کہ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی, انسانوں کے رب کی, بالکل جس طرح پیچھے تھا نا صبح کے وقت کے رب کی, اب یہاں پر ہے انسانوں کے رب کی. ٹھیک ہے, یہ کنسٹرکشن آپ کو بتائی تھی کل کہ رب جو ہے یہ الناس کے ساتھ جڑ کر کے ایک اضافت والی کنسٹرکشن بنا رہا ہے, اضافت والا مرکب, انگلش میں اس کو کہتے ہیں پوزیسو کنسٹرکشن. اور اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں کہ بعد میں آنے والے لفظ کو اردو میں پہلے پڑھتے ہیں, اس کے بعد کا لگاتے ہیں یا کی بھی لگا سکتے ہیں یا کے بھی لگا سکتے ہیں, کا بڑی زبر کے. ٹھیک ہے, تو آواز کٹ کے آ رہی ہے, پتہ نہیں اگر صرف آپ کے ساتھ پرابلم ہے تو آپ کا نیٹورک ہو سکتا ہے اس وقت اوپر نیچے ہو رہا, اگر کسی اور نے کہا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے نیٹورک کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو انسانوں کا رب, کیونکہ یہ پوزیسو کنسٹرکشن ہے نا, رب بن ناسی, تو اس کا ترجمہ اردو میں الٹے طریقے سے کرتے ہیں کہ ناس کا رب, یعنی انسانوں کا رب. رب کا لفظ چونکہ مذکر ہے
इस वजह से इंसानों का रब कहा, लेकिन अगर रब का लफ्ज मोनस होता तो कहते इंसानों की रब, ठीक है, लेकिन रब चूंकि मुजक्कर है इस वजह से उर्दू में का रब से ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो का के की, ये का के की इस पोजेसिव कंस्ट्रक्शन के उर्दू तर्जुमे में आता है, डिपेंडिंग ऑन के जो 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 लफ्ज है, पहला वाला लफ्ज मुजक्कर है या मोनस है, बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बिरब नासी कह दीजिए कि मैं पना मांगता हूं इंसानों के रब की। मलिक नासी, मलिक कहते हैं बादशाह को, ठीक है, जैसे मलिक अब्दुल्ला, मलिक फहद, तो जहां भी जिस मुल्क में भी बादशाह है वहां पे आप इस लफ्ज से खुसूसन वाकिफ हैं। तो ये मलिक जो है ये बादशाह को कहते हैं, यानी ऐसे शख्स को जो कि पॉलिटिकली जिसके पास अथॉरिटी हो, यानी उसके पास कंट्रोल हो किसी इलाके का, ठीक है, तो उसको उस जगह का मलिक कहते हैं, ठीक है। तो मलिक नासी, ये भी वही पोजेसिव कंस्ट्रक्शन चल रही है जिसको इजाफत कहते हैं इंग्लिश अरबी में। ये इजाफत जो है वो गौत के साथ है, सौत के बाद जो आता है गौत, इजाफत इंसानों के बादशाह की, ठीक है। मलिक नासी का तर्जुमा इंसानों के बादशाह की। इलाह नासी, इलाह कहते हैं माबूद को, जिसकी परस्तिश की जाए, जिसको पूजा किया जाए, जिसकी पूजा की जाए, या इसकी अगर और आप तफसीली तारीफ करें तो इलाह उसको कहते हैं जिसकी मान के चला जाए हर हाल में, ठीक है। इसको कहते हैं अनकंडीशनली, जिसकी मान के चला जाए उसको इलाह कहते हैं। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, जिसकी मान के चला जाए उसको इलाह कहते हैं, ठीक है। बेशक आप उसके सामने अपना सर ना झुका रहे हो, लेकिन अगर आप मान के चलते हो ना उसी की, तो वही आपका इलाह है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि कभी मान लिया कभी नहीं मानी। मिसाल के तौर पर वालदैन की कभी मान के चलते हैं ना, बच्चे होते हैं तो वालदैन की मान के चलते हैं, तो क्या वालदैन आपके इलाह बन जाते हैं? नहीं, सिर्फ ऐसे मानने से नहीं कोई इलाह बन जाता, बल्कि अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस जिसकी मान के चले जाए ना वो इलाह बन जाता है, ठीक है। तो इलाह नास इंसानों के माबूद। तो गोया के ये कुल आउजू जो है ना शुरू के अंदर ये कंटिन्यू हो रहा है, कुल आउजू बी ये आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। तो क्या हो रहा है ये, अगर हम इसको तफसीरन इस सूरत को पढ़ें शुरू की तीन आयात को, तो कैसे पढ़ेंगे? कुल आउदु बिरब्बिन नासी, कुल आउदु बिमलिकिन नासी, कुल आउदु बिइलाहिन नासी, ठीक है। तो बा जो है वो मलिकिन नासी पे भी अप्लाई हो रहा है, इलाहिन नासी पे भी अप्लाई हो रहा है, और कुल आउदु जो है वो तो हो ही रहा है, ठीक है। यानी मैं पना मांगता हूं इंसानों के रब की, इंसानों के बादशाह की, और इंसानों के माबूद की। अब बात शुरू हो रही है किसके खिलाफ, या किस से पना मांग रहा हूं मैं? अल्लाह ताला की, ठीक है। अब वो बात शुरू हो रही है। पिछली सूरत में आपने नोट किया होगा कि पहली ही आयत के बाद शुरू हो गई थी ये बात, लेकिन यहां पर तीन आयतों के बाद यह बात शुरू हो रही है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। बजायर हम तो सारी जिंदगी ये दो सूरतें पढ़ते रहे हैं, लेकिन हमने इस डिफरेंस के ऊपर गौर नहीं किया होगा, लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जो कि तफसीर में इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो अब बात शुरू हो रही है मिन शर्री अल वसवासिल खन्नासी, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासी, ठीक है। महावरत में तर्जुमा के वसवसा डालने वाले खन्नास के शर से, ठीक है, ये महावरतन हो गया, और लफ्जन मिन हर्फ जर होता है, इसका तर्जुमा से करते हैं, शर बुराई को कहते हैं, ठीक है। अल वसवासी ये क्या है? अच्छा, शर के बारे में आपको पहले बता दिया था ना कि ये इसम है, और क्या पहचान है इसके इसम होने की? ना तो उसके ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ है, ना इसके लास्ट लेटर के ऊपर कोई तनवीन नजर आ रही है, तो फिर क्या पहचान है कि शर इसम है?
जी कोई बताएगा आपने से जल्दी से, फिर कैसे पता है कि शर जो है वो इसम है? क्योंकि इससे पहले मिन आ रहा है और मिन हरफे जर है, ठीक है, तो सिर्फ इसम से पहले ही हरफे जर आ सकता है। अच्छा, अलवसवासी, इसके अंदर भी वही मामला हो रहा है कि असल लफ्ज तो वसवास है लेकिन अलिफ लाम मारफा के लिए लगा हुआ है, ठीक है, तो वसवास ये क्या चीज है? ये वसवसा की जमा है, ठीक है, ये भी इसम है और ये प्लूरल टेंस है यानी जमा का सीगा है। इसका वाहिद क्या है? वसवसा, ठीक है, वसवसा जैसे हम उर्दू जुबान में भी कहते हैं कि वसवसे हमारे दिल में आते हैं, ठीक है, ये इसम फाइल नहीं है, ठीक है, ये इसम फाइल नहीं है, ये बस एक वसवसा एक इसम है, नॉर्मल इसम, इसम जामिद कह लें उसको, ये मतलब ये आपने अभी पढ़ा नहीं है, तो बस ये वसवसा इसम है। जिस तरह आपको पीछे बताया था ना नफासात, ये प्लूरल था, वो एक्चुअली नफासात तो इसम फाइल ही था, लेकिन यहां पर ये अलग चीज है। अच्छा, अच्छा वसवसा अगर आप पूछ ही रहे तो बता देता हूं कि ये वसवसा जो है ये कहलाएगा इसम मसदर, क्योंकि इसम फाइल तक तो हमने आपको बता दिया है, तो अब आप एक और बात सुन लें, ये इसम मसदर कहलाता है, ठीक है, मसदर मींस वो जिससे के दूसरे इसम निकलते हैं, डिराइव किए जाते हैं, गोया कि ये रूट होती है, ये जो मसदर होता है ना इसम मसदर, ये रूट होता है, जड़ होता है, और जड़ में से आपको पता है पूरा दरख्त निकलता है, यानी पूरा दरख्त उसमें से ग्रो होता है और असल तो जड़ होती है, तो वसवसा जो है वो इसम मसदर है और इसकी जमा वसवास होती है। अच्छा, अल खन्नास, अच्छा अल खन्नास, ये भी जो है खंसुन की जमा है, ठीक है, और इसका मतलब होता है पीछे हट जाने वाला, पीछे हट जाने वाला, ठीक है, तो खंसुन की ये जमा है खन्नासुन, और फिर उसके ऊपर अलिफ लाम लगा दिया, ठीक है, ताकि इस कैटेगरी के जो भी चीजें हैं ना उन वो भी वो सारी की सारी इसमें शामिल हो जाए। प्लूरल होना भी शायद इसम की अलामत है, हाँ बिल्कुल, इसलिए कि फेल जो है वो प्लूरल नहीं हो सकता और हर्फ भी जो है वो प्लूरल नहीं हो सकता, इसम की काफी अलामत है, हम तो आपको सारी नहीं बता रहे ना, तो हमने तो जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे आपको बता रहे हैं, तो यहां पर क्योंकि अलिफ लाम वाली अलामत मौजूद थी तो इस वजह से प्लूरल वाली अलामत जहन में नहीं आई आपको बताना इस वक्त, ठीक है। खंसुन के मानी क्या है? पीछे हटने वाला, यानी पीछे हटने वाला से मुराद ये नहीं कि जी हर वक्त वो पीछे की तरफ मूव करता रहता है, बल्कि पीछे हटने वाले से मुराद यह है कि वो आगे बढ़ के एक अमल करता है और उसके बाद फिर एक ही टेक्स अ स्टेप बैक, यानी वो रिट्रीट करता है और फिर दोबारा आगे हमला करता है, फिर उसके बाद रिट्रीट करता है यानी पीछे हटता है, फिर दोबारा हमला करता है, तो चूंकि उसके अंदर ये रिट्रीट करने वाली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा उसके अंदर प्रोमिनेंट है, तो इस वजह से ना उसको पीछे हटने वाला ही कहना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो पीछे हट हट के हमले करता है, पीछे हट हट के आगे बढ़ता है, एडवांस करता है, तो खन्नास का तर्जुमा जो है वो इस तरह से बनता है। अच्छा, इसके बाद यानी इसका तर्जुमा हो गया कि मैं पनाह मांगता हूं पीछे हट के हमला करने वाले के वसवसों से, ठीक है, अब मजीद तफसील इंशाल्लाह मारफ मसाइल के अंदर देखेंगे इसकी, क्योंकि इसका जो तर्जुमा है ना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है एक्चुअली, काफी यानी इसके तर्जुमे में काफी तफसील है। आखिरी दो आयात, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूर नासी, वो जो के वसवसे डालता है इंसानों के सीनों में, सीनों में, अच्छा अल्लज़ी ये एक इसम की किस्म है, इसको इसम मौसूला कहते हैं, मौसूला, ٹھیک ہے, یہ بھی ہم پیچھے آپ کو بتا چکے ہیں, لیکن الذی نہیں آیا تھا بلکہ ما آیا تھا, تو ما بھی اسم موصولہ ہوتا ہے, تو الذی بھی اسم موصولہ کی ایک قسم ہوتی ہے. اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ جو, دا ون ہو, یوسوسو, یہ جو ہے فعل ہے اور فعل مضارع ہے, ٹھیک ہے, یعنی فعل کے جو چار بنیادی ٹینسز آپ کو بتائے تھے ان میں سے یہ مضارع والا ٹینس ہے, اور اس کا یہاں پہ سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا ترجمہ پریزنٹ ٹینس سے کریں گے, حال, ٹھیک ہے. تو یوسوسو کا ترجمہ ہوا وہ وسوسہ ڈالتا ہے, ہی وسپرز, وہ وسوسہ ڈالتا ہے, ٹھیک ہے. فی وہی ہے حرف جر پیچھے آیا تھا فی العقد میں, اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں میں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد صدور, صدور یہ جمع ہے صدر کی, یہ اسم ہے کیونکہ حرف جر فی کے بعد آ رہا ہے, یہ اس کی ایک نشانی ہو گئی, اور جیسے کہ عمران صاحب نے فرمایا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے, یعنی اس کا جو ٹینس ہے وہ پلورل ہے, کیونکہ اس کا آپ کو واحد بتایا کہ صدر ہے اس کا واحد, تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ یہ اسم ہے, ٹھیک ہے. تو صدور کہتے ہیں سینوں کو, اور صدر کہتے ہیں ایک سینہ. یہاں پر صدر سے مراد پورا سینہ نہیں ہے, بلکہ دراصل سینے کے اندر جو اللہ تعالی نے انسان کا قلب بنایا ہے, قلب, اسپرچل ہارٹ, ناٹ دا فزیکل ہارٹ, اسپرچل ہارٹ, روحانی قلب, وہ مراد ہے یہاں پر, یعنی تفسیر صدور کی قلب ہے. صدور الناس, انسانوں کے سینے, ٹھیک ہے, یہ بھی وہی پوزیسو کنسٹرکشن چل رہی ہے, تو اس کا ترجمہ اردو میں الٹا کریں گے, انسانوں کے سینے. اب دیکھیں چونکہ یہاں پر سینے ہے نا, تو اردو میں ترجمے کے لیے کا یا کی استعمال نہیں کریں گے بلکہ کے استعمال کریں گے, انسانوں کے سینے, ٹھیک ہے. تو الذی یوسوسو, وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے سینوں میں. کوئی سوال؟ بالکل آخری آیت ہے پورے قرآن کی, آخری آیت, من الجنتی والناسی, بڑی عجیب آیت ہے پورے قرآن کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ختم جو ہے بڑے عجیب انداز سے اور بڑے عجیب لفظ پہ کیا ہے, انسان کے لفظ پہ پورے قرآن کو ختم کیا ہے. من الجنتی والناسی, لیکن انفارچونیٹلی ہم انسانوں کی بدبختی کے ہیں, یا جو بھی سمجھیں اس کو, کہ ہمارا جو تذکرہ قرآن کے آخر میں ہوا ہے نا, یہ کوئی پازیٹو معنوں میں نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے, بڑے ہی برے معنوں میں ہوا ہے, کیونکہ یہاں پر سینوں کے اندر وسوسے ڈالنے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, جو کہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. تو ہمیں یعنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ کہ قرآن کا اختتام انسانوں کے تذکرے پر ہو رہا ہے, لیکن وہ تذکرہ ایک نیگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ آ رہا ہے. تو من, یہ پہلا جو لفظ ہے من ہے, یہ من حرف جر ہوتا ہے, یہ وہی من ہے جو کہ دونوں صورتوں میں کئی دفعہ آیا, لیکن جو نون کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہا ہے نا, یہ زبر جو ہے وہ کسی اور مقصد سے یہاں پر ہے, ٹھیک ہے, اصل میں یہ من ہی ہے, ٹھیک ہے, اصل میں یہ من ہے, اوکے. پڑھنے کے لیے زبر لگانا پڑتا ہے, پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو اس کا تعلق گرامر سے نہیں ہے, اس کا تعلق قرت سے ہے جو زبر لگایا گیا, ٹھیک ہے. تو من کا مطلب ہوتا ہے سے. الجنتی, اس کے اندر لفظ جو ہے وہ جنہ ہے, جنہ, جنتن اصل میں لفظ ہے, جنتن, اور الف لام اس کے اوپر لگایا ہوا ہے تاکہ جنوں کی پوری کیٹیگری یا پوری کی پوری نسل اس کے اندر شامل ہو جائے. تو جن کہتے ہیں اس مخلوق کو جو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمائی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد الناسی, یہ تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, انسانوں کی نسل کو کہتے ہیں الناسی, ورنہ الف لام کے بغیر اصل میں لفظ ہے ناس, ٹھیک ہے. دیکھیں क्या हाल हो चुका है मुसलमानों का, एक दफा एक अरब लड़के से जो कि फलस्तीनी है और जॉर्डन में सारी जिंदगी उसकी गुजरी, फलस्तीनियन जॉर्डन यानी जॉर्डेनियन फलस्तीनियन जो होते हैं, तो एक दफा उससे एक ऐसी बात हो रही थी तो उसने पता नहीं क्या किस कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा कि कहता है कि जो सूरत नास है उसके अंदर अल्लाह ताला ने बागात का जिक्र किया, इस तरह से ना उसने बात करी। मैंने कहा सूरत नास में कहां बागात का जिक्र है, तो कहता है उसके अंदर आखिर में है ना कि मिनल जन्नत इवन नास, नहीं वो कहता है मिनल जिन्नत इवन नास, तो वो इस लफ्ज जिन्नत को जिन्ना जो है ना उसको जन्ना पढ़ा था और जन्ना जो है वो बाग को कहते हैं, ठीक है, जन्नत जो हम कहते हैं ना पैराडाइज को, तो वो जन्नत है, वो जिन्नत नहीं है, वो जन्ना है, ठीक है, तो वो जीम के ऊपर जबर होता है। तो वो बेचारा अरब होने के बावजूद और पैदाइश भी, ये भी नहीं कि अमेरिका में पैदा हुआ अरब हो, बल्कि अरब मुल्क के अंदर पैदा हुआ अरब है, लेकिन उसको जो है वो बाघ समझ रहा था अब तक, और उसकी उम्र होगी कोई यानी अब तो शायद 40 साल से ज्यादा उसकी उम्र होगी। तो खैर, जन्ना अलग चीज होती है और जिन्ना अलग चीज होती है, ये जिनको कहते हैं, ठीक है। तो तर्जुमा लफ्जी तहकीक वगैरह, वही आपका सवाल है, हाउ वी नो सेंटेंस इज इजाफत। सेंटेंस तो पूरा इजाफत नहीं होता, उसका एक टुकड़ा जो होता है ना वो उसके अंदर इजाफत वाला मानी बनता है, ठीक है, तो वो इजाफी उसको कहते हैं मुरक्कब। वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस नहीं होता, जुमला नहीं होता, जुमले को अरबी में यानी सेंटेंस को अरबी में जुमला कहते हैं। तो इजाफत जो होती है ना ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, मुरक्कब गैर मुफीद इसको कहते हैं। आप इसको पता कैसे चलाएंगे, पता चलाने का तरीका ये होता है कि उसके आप आराब को देख करके यानी जो उसके ऊपर जेर जबर पेश वगैरह लगे हुए ना उससे आपको अंदाजा हो जाता है। ये जरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी आपने इतना पढ़ा नहीं है तो आपको शायद समझ में आए, दूसरों को नहीं आएगा, तो इस वजह से अभी इस डिस्कशन को हम पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अरबी की ग्रामर जब पढ़ेंगे ना इसमें आपको ये सारी तफसीलात पता चलती चलेंगी। तो ये तर्जुमा मुकम्मल हुआ, अब हम आज ही की तारीख में इंशाल्लाह इनकी खुलासा तफसीर और मारफ मसाइल वगैरह भी कर लेते हैं, शुरू कम अज कम कर लेते हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा तफसील है इसके अंदर। वाव क्या है, वाव एक हर्फ होता है और हर्फ का आपको नाम नहीं बताया है लेकिन पूछ रहे हैं तो लिखने कि ये वाव हर्फ अतफ होता है, अतफ, ठीक है, अतफ, वाव अतफ कहते हैं, आयन पौ फा, ठीक है। वैसे वाव अतफ के अलावा और मुख्तलिफ किस्मों के भी होते हैं लेकिन यहां जो वाव आ रहे हैं ना वो सारे वाव अतफ वाले हैं। Both genus have alif lam. Is this mean that this is pointing to a specific group? नहीं, यहां पर अल जिन्ना और अन नास जो आ रहा है ना तो इसका मतलब यह है कि जिन्नों की जो पूरी की पूरी नस्ल है उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि ये काम करते हैं, ठीक है, और अन नास से मुराद यह है कि इंसानों की जो पूरी की पूरी जिन्स है या इंसानों की पूरी जो नस्ल है, ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जो आखिरी इंसान इस दुनिया के अंदर आएगा उस वक्त तक, यानी जितने भी हैं वो सारे अन्नास में शामिल है, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि ये वाला काम करते हैं, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, इंसानों के यानी इंसानों के दिलों के अंदर वसवसे डालते हैं, ठीक है। तो अल जिन्ना और अल नास में यहां पर मुराद पूरी की पूरी नस्ले जिन और नस्ले इंसानी मेर मुराद है। तो यहां पर अगरचे के अलिफ नाम का और मकसद भी होता है लेकिन वो मकसद यहां पर नहीं हो रहा, बल्कि यहां पर पूरा जिन्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ये इंशाल्लाह मारफा वगैरह की जो डिस्कशन है ना उसमें आपको और मजीद तफसीलात पता लगेंगी। शुरू करते हैं सूरह अल इखलास, खुलासा तफसीर मारफ मसाइल वगैरह। इसमें आपको शुरू में हमने जब मारिफुल कुरान तफसीर की इंट्रोडक्शन करवाई थी तो आपको बताया था कि हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह जो कि इसके मुअल्लिफ हैं, मुअल्लिफ कहते हैं कंपाइलर को, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से इसको राइट नहीं किया है, ये उनकी अपनी किताब नहीं है, उन्होंने इसको कंपाइल किया है, जो उलूम उन्होंने हासिल किए तर्जुमे के बारे में और तफसीर के बारे में, उन उलूम को उन्होंने यहां पे एक जगह पे अपने इल्म के हिसाब से जमा कर दिया है। तो इस वजह से ना ऐसे शख्स को राइटर नहीं कहते, ऑथर नहीं कहते, ठीक है, मुसन्निफ नहीं कहते, बल्कि इसको मुअल्लिफ कहते हैं, यानी तालीफ करने वाला, कंपाइल करने वाला। तो मारिफुल कुरान के कंपाइलर जो है वो हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह हैं। उन्होंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि जो तर्जुमा है वो हजरत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह का है, जो कि हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के एक फर्जंद थे। उन्होंने 40 साल मस्जिद में इतकाफ की हालत में बैठ के ये तर्जुमा लिखा था। इस तर्जुमे को चंद सौ साल के बाद, तकरीबन 200 साल के बाद, हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, जो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी मशहूर हैं और दारुल उलूम देवबंद के पहले उस शागिर्द के की हैसियत से भी मशहूर हैं, तो उन्होंने इस तर्जुमे को जरा मॉडर्नाइज किया था। तो हजरत मुफ्ती और शफी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का जो वर्जन था वो मारिफुल कुरान के अंदर तर्जुमे में इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर जो खुलासे तफसीर आती है, खुलासे तफसीर में फरमाया था उन्होंने इंट्रोडक्शन में कि हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जो तफसीर है बयानुल कुरान, उसमें जो उन्होंने तफसीर करी है ना, उस तफसीर को इन्होंने खुलासे तफसीर के अंदर शामिल कर लिया है। बस चंद अल्फाज जो कि बहुत मुश्किल हो गए थे लोगों के लिए वक्त गुजरने के साथ, तो उनको एक्सप्लेन अपने अल्फाज में कर दिया, ठीक है। और फिर मारिफ व मसाइल जो थर्ड टॉपिक होता है, जो थर्ड हेडिंग होती है, उसके अंदर उन्होंने जो मुख्तलिफ तफासीर मौजूद हैं शुरू से लेकर के अब तक, उनमें से जहां जहां इनको अपने हिसाब से रेलेवेंट बातें नजर आई आज के दौर के इंसानों के लिए यूजफुल, उन चीजों को ले लेकर के उन्होंने मारिफ व मसाइल के अंदर तरतीब दे दिया, और जहां से जो चीज ली तो उसका हवाला भी साथ साथ मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इस मारिफ व मसाइल के अंदर उन्होंने जो पुरानी तफासीर है उनको रेफर किया है, और कुछ बातें उन्होंने अपने समझ के मुताबिक जो अपने उलूम से उन्होंने समझी या किसी बात को उन्होंने अपने दौर के अंदर रेलेवेंट देखा तो अपनी तरफ से भी कुछ चीजें इसके अंदर शामिल करी हैं, ठीक है। तो ये तीन बातें अगेन रिपीट कर दी इन तीन हेडिंग्स के बारे में, यानी तर्जुमा, फिर खुलासा तफसीर और फिर मारिफ व मसाइल। काइंडली टेल द शान नुज़ूल ऑफ दीज टू सूरास। जी हाँ, ये जो मारिफ व मसाइल वगैरह इसमें सब कुछ आता है, शान नुज़ूल वगैरह भी। तो ये इब्तिदा ही शान नुज़ूल से होती है। उम्मीद है कि आप लोगों के पास किताब मौजूद होगी, बिकॉज मैं किताब से पढ़ करके ही आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, तो ज्यादा अच्छा हो कि आपके सामने भी किताब मौजूद हो। किताब कौन सी है? मारूफ व मसाइल की आखिरी जिल्द, जिल्द नंबर 8, ठीक है। उसकी अगर आपके पास 8वीं जिल्द है तो उसका पेज नंबर 842 है, 842। अब वो दो वर्जन हैं इस तफसीर के, यानी दो प्रिंटिंग्स हैं। मेरे पास जो ब्लैक कलर की जिल्द वाली प्रिंटिंग है तो उसके अंदर 842 पेज बनता है। बहरहाल सूरतुल इखलास आप निकाल सकते हैं और इसके अंदर मारूफ व मसाइल से हम पढ़ रहे हैं। शान नुज़ूल आपको बताया था कि कुरान की जो सूरतें और आयतें हैं उनके नाजिल होने का जो पस मंजर होता है उसको शान नुज़ूल कहते हैं, क्योंकि कुरान नाजिल हुआ, ठीक है, वो ऊपर से अर्श से नाजिल हुआ, पहले आसमान के ऊपर, और फिर पहले आसमान से नाजिल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब के ऊपर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से, ठीक है। अलबत्ता हदीस के बारे में आपको बताया था कि हदीस के जो पस मंजर होता है उसको शान नुज़ूल नहीं कहते, उसको शान वुरूद कहते हैं, क्योंकि हदीस वारिद हुई, वारिद होना कहते हैं कि कोई बात जो है वो रूनुमा होना, या कुछ चीज जो है वो इंसान की जुबान से निकलना, मुंह से निकलना, तो उसको कहते हैं वारिद होना। जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं ना कि फलाना शख्स वारिद हुआ या फलाना वाकया वारिद हुआ, उसी तरीके से हदीस वारिद होती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फरमाते हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काम को करते हैं जो हदीस के अंदर नोट किया गया। तो शान वुरूद हदीस के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। अब इसके शान नुज़ूल के बारे में फरमाते हैं कि तिर्मिजी और हाकिम वगैरह की रिवायत में। अच्छा, यहां पर मैं समझता हूं एक पॉइंट आप लोगों के सामने रिपीट करने का कि आप में से एक साथी है, उनका सवाल का जवाब भी इसमें शायद मिल जाए, वो ये कि ये जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है ना, ये प्रोग्राम जो है दीन एसेंशियल्स प्रोग्राम है, ठीक है, इसके लिए जो मैंने पहली ईमेल भेजी थी तो उसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एक यानी एक पैराग्राफ के अंदर चंद लाइनों में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कोई बहुत तफसीली नहीं थे। तो उनमें एक बात ये लिखी थी कि दीन की जो अहम बातें हैं उनका इल्म हासिल करना, ठीक है। तो अब इसमें उमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि नमाज कैसे पढ़नी है और वजू कैसे करना है और चंद इस तरह की ना जो अहम बातें हैं वो उनको हम समझते हैं कि दीन, उनको हम दीन एसेंशियल समझते हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये प्रोग्राम आपको इसलिए नहीं शुरू किया है पढ़ाना कि आप ये चंद बातें सीख जाएं, या ये कि आप पूरे कुरान की तफसीर इसके अंदर सीख जाएं, ठीक है, या आप जो है वो पूरी की पूरी हदीस लिटरेचर इसके अंदर पढ़ लें या पूरी की पूरी फिकह इसके अंदर पढ़ लें, इसका ये इसका स्कोप नहीं है, ठीक है। इसका स्कोप है जो एसेंशियल्स है ना वो आपको समझ में आ जाए। अब हाउ डू यू डिफाइन एसेंशियल्स एंड हु डिफाइंस द एसेंशियल्स, तो भाई इसकी डेफिनेशन जो है ना वो किसी ने तो करनी होगी ना, राइट। तो यहां पर चूंकि ये आजिज फकीर बेतदबीर ये आपका टीचर है यहां पर, तो आपकी बदकिस्मती कह लें या मेरी जो है वो कमजोरी कह लें, जो भी कहें इसको, लेकिन इस स्कोप की डेफिनेशन जो है वो इस फकीर को ही करनी होगी, इस आजिज को ही करनी होगी कि भाई इसके अंदर व्हाट इज एसेंशियल, ठीक है। तो अब मैं कैसे किस बेसिस पे इसकी डेफिनेशन करूंगा, वो इस बेसिस पे करूंगा कि मैंने जिस चीज को अपने टीचर से अपने मशाइख से एसेंशियल समझा कि जो जरूरियात हैं, ठीक है, आज के दौर के मुसलमानों को जिन चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए, जिन चीजों के बारे में उनको मालूम नहीं है, ठीक है। बिकॉज मेरा भी बैकग्राउंड ऐसा ही है कि यानी सेक्युलर एजुकेशन तो खूब हासिल करी, ठीक है, नमाज पढ़ते थे और एक नॉर्मल जिसको कि एक शरीफ घराना कहते हैं उससे तो ताल्लुक रखते थे, लेकिन दीन की बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। बड़े होने के बाद अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, उलमा मशाइख के साथ ताल्लुक अता फरमाया, तो समझ में आया कि भाई कितनी सारी चीजें हैं जो कि नहीं पता थी और इनका पता होना कितना जरूरी था, उनकी बेसिस पर जिंदगी के कितने अहम फैसले थे जो कि हम गलत कर रहे होते थे, ठीक है, और कितना नुकसान उठा रहे होते थे। तो ये ना एक इंसान के जहन के अंदर एक पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क बनता है, एक पूरा का पूरा एक इमेज, एक यानी एक पूरा का पूरा एक निजाम बनता है कि भाई क्या चीज अहम होती है, क्या चीज अहम नहीं होती, ठीक है। तो इस लिहाज से ये एसेंशियल्स जो है ना वो आपको देना मकसूद है इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब इसकी एक बहुत वाइड डेफिनेशन है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं बहुत ज्यादा वक्त ना लगाऊं कि आपको एक एक निटी ग्रिटी के अंदर बहुत ज्यादा वक्त लगाऊं, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको चीजों की वाकफियत साथ साथ देता रहूं, ठीक है, जिनकी वाकफियत इस दौर के अंदर गलतियों से बचने के लिए हमें चाहिए होती है, ठीक है। गलतियों से बचना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और फिर आगे नेक अमल करना उसके बाद उसकी अहमियत आती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें करने के आप काबिल हो जाएं। तो इस वजह से ना आपको फॉर एग्जांपल पिछले दिनों के अंदर आपको मैंने एक चीज बताई कि फतवा क्या चीज होती है, ठीक है। अब ये फतवा क्या चीज होती है आप शायद सुनते रहेंगे कि भाई फतवा पूछ लो जाकर के, मुफ्ती साहब ये होते हैं, मुफ्ती साहब से जाकर के सवाल पूछना होता है। लेकिन क्या आपको, हो सकता है आप में से अक्सर कोई बात पता ना हो, कुछ को पता हो भी सकती है, लेकिन अक्सर कोई बात पता ना हो कि फतवा क्या चीज होती है। हर सवाल जो आप पूछते हैं ना मुफ्ती से जाकर के, उसके ऊपर मुफ्ती फतवा नहीं देता आपको, ठीक है। मुफ्ती आपको, वो मुफ्ती साहब है, वो आपको मसला बता देते हैं जैसा कि वो किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन वो फतवा नहीं होता, वो मसला बता देना होता है, ठीक है। फतवा तो उस चीज के बारे में दिया जाता है जो कि नई चीज हो, नया सवाल हो, जो कि कुरान हदीस और इजमाए उम्मत के अंदर ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड ना हो, उसके ऊपर फतवा दिया जाता है, ठीक है। जिसके ऊपर किसी भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया था कि क्या ये इज्तिहाद भी मुफ्ती कर रहा होता है, ठीक है। तो अब ये टर्म इज्तिहाद है, ये टर्म भी बहुत ही ज्यादा मिस इंटरप्रिटेड टर्म है और इसके बारे में लोगों के जहन में बड़ी कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन की वजह से बहुत लोग गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं, हत्ता के वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं सिर्फ इस एक लफ्ज इज्तिहाद के बारे में जो गलत फहमी फैली हुई है ना उसकी वजह से, ठीक है। तो हमारे ये आपके यानी गोल ये है कि हम आपको इस तरह की टर्म्स से फेमिलियर करें,
ٹھیک ہے, اس قسم کی ٹرمز سے فیمیلیئر کریں, اور اس کے بارے میں اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اس غلط فہمی کو دور کرنے میں آپ کی مدد کریں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا پیس جو ہے وہ اس کا اتنا تیز نہیں ہوگا, لیکن اس میں انشاءاللہ آپ کو میٹر جو ہے وہ ملتا رہے گا. اب ظاہر ہے کہ ہر بندے کے کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے, ہر اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ لیول جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور ہمیں تو اکثر کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کس لیول سے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو کسی نے عربک گرامر پہلے سے کی بھی ہے, لیکن میں تو ایک ایک لفظ کے بارے میں آپ کو بہت ہی بیسکس بتا رہا ہوں, تو جس نے پہلے سے کی بھی ہے اس کو ذرا صبر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے کہ بھائی یہ چیزیں تو مجھے پتا ہیں, تو وہ تو چاہے گا کہ وہ تیزی سے آگے بڑھے, لیکن ہر ایک کو تو اسپیس پہ نہیں لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں نا. کچھ لوگ تو بالکل ہی الف با تا والے لیول کے اوپر ہے, تو اس میں یہی ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک ہی ہوتا ہے, ٹیچر کو بھی تھوڑا سا گفٹ کرنا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو بھی گفٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یعنی کمپرومائز کر کے کوئی بھی سسٹم چلتا ہے دنیا کا. جیسا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ویسے دنیا کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, دنیا کا مزاج ہی نہیں ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز کو پورا کیا جائے. ہاں, دا بیسٹ وی کین ڈو, وی کین میک آر ایفرٹ کہ زیادہ سے زیادہ ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال کمپرومائز ہی اس دنیا کے اندر ایک کانسٹنٹ ہے. اس دنیا کے اندر کمپرومائز از دا کانسٹنٹ, ایوری تھنگ ایلس از اے ویریبل. ہر چیز جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے دنیا میں. تو اس وجہ سے شان نزول کی بات آئی, تو اب شان نزول کے اندر پہلا لفظ ہے ترمذی. ٹھیک ہے, اب کچھ دو ساتھی ہوں گے ان کو ترمذی کے بارے میں پتا ہوگا, اکثر کو ہو سکتا ہے ترمذی کے بارے میں پتا نہیں ہو کہ ترمذی کیوں لکھا ہوا یہاں پر, حاکم کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ترمذی حاکم وغیرہ کی روایت میں. اب اس کے اندر ایک لفظ روایت بھی آ گیا, روایت کیا چیز ہوتی ہے. یہ روایت لفظ جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ابیوزڈ لفظ ہے, اس کو بھی کچھ لوگ جو ہے وہ غلط فہمی پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں روایت لفظ کو. ٹھیک ہے, تو اس روایت لفظ کو بھی ایکسپلین کرنے کی تھوڑی سی کوشش کر لیں گے. تو اس طرح سے ذرا آپ کو صبر کرنا ہوگا, لیکن آپ اس کو اپنے فائدے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. باقی یہ کہ اس کا جو ڈیوریشن وغیرہ والا معاملہ ہے وہ اس کو انشاءاللہ ہم کبھی اور ڈسکس کریں گے کہ کتنا ڈیوریشن تک ہم نے چلانا ہے, اور کورس کیا ہے ہمارا. تو کورس ایکچولی ہم نے ای میل میں لکھ دیا تھا, لیکن دوبارہ اس کو گروپ کے اوپر پیسٹ بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو فی الحال شان نزول میں فرماتے ہیں ترمذی حاکم. ترمذی اور حاکم یہ ہیں تو بندوں کے نام, انسانوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب کبھی اس طرح سے لکھا جاتا ہے ترمذی, تو مراد یہ ہوتی ہے کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث کی کتاب ترتیب دی تھی وہ مراد ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جامع ترمذی مراد ہے, جو کہ ان کی لکھی ہوئی یا ان کی کمپائل کی ہوئی حدیث کی کتاب ہے. اسی طرح مسند حاکم, یہ حدیث کی ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے, جو کہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی تھی. تو ان دونوں کتابوں کے اندر روایت میں ہے. روایت کس چیز کو کہتے ہیں؟ روایت جو ہے جو چیز کسی نے سن کر کے آگے نقل کری ہو اس کو روایت کہتے ہیں, اور نقل کرنے والے کو راوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سوری, آئی ایم ریلی سوری. واقعی جزاک اللہ. سورۃ الفلق کی بجائے سورۃ الاخلاص شروع کر دیا. دیکھیں, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ لوگ اس غلطی سے اطلاع دے دیں. جزاکم اللہ خیر. خلاصہ تفسیر سورۃ الفلق کی. اچھا, وہ ترمذی اور حاکم وغیرہ کے بارے میں چلے آپ کو باتیں تو بتا دیں, اور اس بہانے جو ہے وہ اس کورس کے اسکوپ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ لگا آج. تو اس کی خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ, اچھا بریکٹ کے اندر یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خلاصہ تفسیر ہے آپ کے بارے میں. تو فرماتے ہیں, یہ پیج نمبر 845 کے اوپر ہے بلکہ, کہ اپنے استعاذہ یعنی اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے اور دوسروں کو بھی یہ استعاذہ سکھلانے کے لیے, جس کا حاصل اللہ پر توکل اور مکمل بھروسے کی تعلیم ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں اور دوسروں کو بھی سکھلائیں. اگرچہ کہ حکم جو ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے کا اصل مقصد جو ہے نا وہ امت کو سکھلانا ہے. یہاں پر ایک اہم سوال کا جواب بھی ہوتا ہے کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کی وجہ سے نازل ہوئیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہیں تھے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل نہیں تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے, جادو کس طرح ہو جاتا ہے, جب حفاظت کا کوئی مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے تبھی جادو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیسے ہو گیا, تو اس کا جواب یہ ہے, اس بریکٹس کے اندر اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ امت کو سکھلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ نے فرمائے, اللہ تعالیٰ نے کروائے, ٹھیک ہے, تاکہ دوسروں کو یہ استعاذہ یعنی پناہ مانگنے کا طریقہ سکھلا دیا جائے. یہ پریکٹیکل ٹیچنگ چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, رائٹ, پریکٹیکلی یہ کام ہوتا تھا اور اس کے اوپر قرآن کی آیت آتی تھی, یا کوئی پریکٹیکلی کام ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایکسپلینیشن فرماتے تھے جو کہ حدیث کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا حاصل کیا ہے, اللہ پر توکل اور مکمل بھروسے کی تعلیم ہے, توکل اور مکمل بھروسہ اللہ پر. یہ ایک بہت لوڈڈ ٹرم ہے, یہ ایک بہت لوڈڈ ٹرم ہے, اور اس کو جب ہم اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بہت دھوکہ کھاتے ہیں. توکل کا جو ٹرم ہے نا, اس کو جب ہم اپنی عقل سے, جو کہ ہماری عقل محدود ہوتی ہے, جو انسان کا ایکسپوجر ہوتا ہے نا اور جتنا اس کا علم ہوتا ہے اسی کی بیسس پر اس کی عقل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو عقل جو ہے وہ ایک لمیٹڈ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جتنا عقل, جتنی ایکسپوجر ہوگا, جتنا علم ہوگا, اتنی عقل ہوگی, تو اتنی عقل کے بیسس پر جب وہ کسی بڑی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نا تو وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی, ٹھیک ہے. اس کو چاہیے یہ تھا کہ اس کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے کسی زیادہ عقل والے کے پاس جاتا, جس کا زیادہ علم ہے اور جس کا زیادہ ایکسپوجر ہے یعنی تجربہ, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا نا, وہ اپنی عقل کے بیسس پر کسی بڑی ٹرم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو کیا کرے گا, غلطی کرے گا, غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے سے توکل اور اللہ پر مکمل بھروسہ, یہ بہت بڑی ٹرمز ہیں, معمولی ٹرمز نہیں ہیں, یہ بہت بڑی ٹرمز ہیں. تو ان کو ہم اپنی عقل سے نہ سمجھنے کی کوشش کیا کریں, بلکہ زیادہ جو عقل والے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر کے ان کو پوچھا کریں کہ یہ کیا چیز ہے. لیکن بہرحال کتاب کے اندر تو ہر چیز نہیں لکھی جا سکتی نا, کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے اندر توکل کیسے کرنا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کیسے کرنا ہے, تو کتاب کے اندر تو ٹرمز لکھ دی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے جو ریسورسز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان ریسورسز کو استعمال کریں. بہرحال ٹرم یہی ہے کہ اللہ پر توکل اور مکمل بھروسے کی تعلیم ان صورتوں کے اندر دی گئی ہے, کہ آپ یوں کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے, اور بالخصوص, ٹھیک ہے, تمام مخلوقات کے اندر عموم آ گیا, عموم, لیکن اب خصوص کیا ہے, یعنی خاص کیا کر رہے ہیں, اندھیری رات کے شر سے, جب وہ رات آ جائے. رات میں شور اور آفات کا احتمال ظاہر ہے, کیونکہ رات کے وقت میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں, رات کے اندر چوری ڈاکے بھی زیادہ ہوتے ہیں, دن میں کراچی میں تو یا پاکستان میں تو شاید زیادہ ہوتے ہوں, لیکن باقی جگہوں پر نا رات میں ہی ہوتے ہیں, دن میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو رات کا تعلق خاص ہے, ایون چوری ڈاکوں سے بھی, یعنی ڈکیتی سے بھی, اور اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کا بھی خاص تعلق رات کے ساتھ ہے. تو یہ بات ظاہر ہے, اس کے اندر کوئی بہت دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک اور خاص بات فرمائی, بالخصوص گندے کی. یہ گندا جو ہے یہ ہم اردو زبان میں جوڑ کے پڑھتے ہیں تعویذ گندے, ٹھیک ہے, لیکن تعویذ الگ چیز ہے, گندے الگ چیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر گندوں کی بات ہو رہی ہے, یہ بالخصوص گندے کی گرہوں پر پڑ پڑ کر پھونکنے والیوں کے شر سے. یہ تفصیل انشاءاللہ معرف و مسائل کے اندر آئے گی کہ گرہوں پر پڑ پڑ کر پھونکنے والیوں سے کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے, جب وہ حسد کرنے لگے. تو یہاں تک تو ترجمہ ہو گیا. اب اس کی خلاصہ تفسیر میں انہوں نے کچھ تفسیر لکھی ہے, یہ ہم آج مکمل کر لیتے ہیں اگرچہ کچھ ایکسٹرا منٹس لگ جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ اول تمام مخلوقات کے شر سے پناہ لینے کا ذکر کرنے کے بعد خاص خاص چیزوں کا ذکر, شاید بمناسبت مقام یہ ہو کہ اکثر سحر کی ترتیب اور ترکیب رات کو ہوتی ہے. قضا فی الخازن, قضا فی الخازن کا مطلب ایسے ہی خازن میں ذکر ہے. قضا کا مطلب ہوتا ہے جیسے. خازن, خازن ایک کتاب ہے, اس کے اندر یہ بات ذکر ہے, تو اس کا ریفرنس یہاں پر دے دیا, ٹھیک ہے. تو نام ہے کتاب کا الخازن,
ताकि किसी को इतला ना हो, ताकि किसी को इतला ना हो, इत्मीनान से उसकी तकमील कर सकें, क्योंकि रात के अंदर ना आप सुकून के साथ काम कर सकते हैं, दिन के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती हैं। इसी वजह से जो नेक लोग होते हैं वो रात में इत्मीनान से नमाजें पढ़ा करते हैं, दिन के अंदर वो इतनी इत्मीनान से लंबी नमाजें नहीं पढ़ सकते। उसी तरह बुरे लोग भी रात को इत्मीनान से अपना काम करते हैं। अच्छा, और गंदे पर दम करने वाली जानों या औरतों की मुनासबत इस जगह जाहिर है, क्योंकि आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहर इसी तरह हुआ था, ख्वाह मर्द ने किया हो या औरतों ने, क्योंकि लफ्ज नफासात का मौसूफ नफूस भी हो सकते हैं जो मर्द और औरत दोनों को शामिल हैं, और औरतें भी इसकी मौसूफ हो सकती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें जरा ग्रामर भी शामिल हो जाती है, तो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना सुन लें कि नफासात के लिए जरूरी नहीं है कि औरतें ही मुराद हों, बल्कि ये मर्द भी मुराद हो सकते हैं। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो यहूदियों ने सहर किया था इसका असल मंशा हसद था, यानी जिस वजह से जादू किया गया था ना वो हसद था। ठीक है, हसद की वजह से उन्होंने जादू किया था। इस तरह सहर के मुतालिका जितनी चीजें थी सबसे इस्तेआजा हो गया, यानी जो भी चीजें सहर के अंदर शामिल हैं सबसे पनाह मांग ली, यानी हसद ही की वजह से जादू किया जाता है। और जादू करने का तरीका यह होता है कि किसी चीज को पढ़ के फूंका जाता है, तो इस तरह से वो गोया के जितनी चीजें जादू से रिलेटेड होती हैं उन सबसे पनाह मांग ली। और बाकी शुरूर और आफात को शामिल करने के लिए मिन शर्र मा खलका फरमा दिया था। ठीक है, यानी जितनी भी चीजें हैं उनके शुरूर से तो पहले शुरू में ही पनाह मांग दी गई। और आयत में जो अल्लाह की सिफत रब्बुल फलक यानी सुबह का मालिक जिक्र की गई, ठीक है, यानी सवाल यह है कि शुरू में रब्बुल फलक क्यों कहा गया, यहां पर रब्बुल नाश क्यों नहीं कहा गया, या रब्बुल शम्स क्यों नहीं कहा गया, रब्बुल कमर क्यों नहीं कहा गया, रब्बुल फलक क्यों कहा गया, यानी सुबह का मालिक जिक्र की गई। हालांकि अल्लाह तो सुबह और शाम सभी चीजों का रब और मालिक है। इस तख्सीस में यानी खास जो किया ना सुबह के वक्त को, इस तख्सीस में शायद इशारा इस तरफ हो कि जैसे अल्लाह ताला रात के अंधेरी का इजाला करके सुबह की रोशनी निकाल देता है, इसी तरह सहर का भी इजाला कर सकता है। क्योंकि जब किसी इंसान के ऊपर जादू का असर हो जाता है, जादू टोना सिफरी अमल का असर हो जाता है, तो उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है और उसको समझ में भी नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ क्या हो गया। वो डॉक्टरों के पास भी जाता है, वो बहुत सारे टेस्ट भी करवा लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होता किसी के इसके हुआ क्या है। डॉक्टर जो है वो उसको कह देते हैं कि जी आप कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है ना, बस ये आपका वहम है, या हमारे पास आपके जो मसला है इसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अब जाहिर है एक बंदा कितना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है जब उसने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के पास जाके अपना इलाज करवा लिया हो, बल्कि टेस्ट वेस्ट करवा लिया हो, और आगे से उसको जवाब दिया जाए कि जी आपको कुछ भी नहीं हुआ, ये तो आपका वहम है, राइट। अब उस बंदे के ऊपर क्या गुजरेगी, बहुत ही बुरी हालत में ऐसा बंदा हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि गोया कि मेरी जिंदगी खत्म ही हो जाएगी अब, क्योंकि राजी करने वालों ने हाथ उठा लिया है। ठीक है, तो यहां पर फलक का लफ्ज इस तरह इस्तेमाल किया कि इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से अल्लाह ताला अंधेरी रात को खत्म करके सुबह की रोशनी निकाल देते हैं ना, उसी तरीके से तुम्हारे ऊपर जो ये अंधेरा आया हुआ है ना, मायूसी का अंधेरा आया हुआ है, परेशानी का अंधेरा आया हुआ है, डिप्रेस हुए हुए हो, तो फिक्र ना करो, अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है कि तुम्हारी इस मायूसी के वजह को यानी जादू के असर को तुम्हारे ऊपर से दूर कर दे। ठीक है, तो अल्लाह ताला सहर का इजाला कर सकता है, हमें मायूसी में जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें जो है जो प्रॉपर तरीके हैं हर काम करने का, अल्लाह ताला ने एक प्रॉपर तरीका बनाया है, हमें उस तरीके से इलाज करवाने की जरूरत है। ठीक है, वो क्या तफसीलात है इंशाल्लाह हम बारह मसाइल के अंदर इस सूरत की भी देखेंगे और फिर इसके बाद अगली सूरत की भी देखेंगे। कोई और सवाल है किसी के पास तो आप पूछ लीजिए, वरना फिर हम अपनी क्लास खत्म करते हैं आज की। ठीक है, माशाल्लाह अभी भी 20 से ऊपर ही लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन एज एक्सपेक्टेड शुरू में माशाल्लाह कोई 60 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर करवाया था, आए तो सिर्फ 40 के करीब ही लोग हैं अब तक मैक्सिमम, लेकिन वो भी तादाद कम होती चली आ रही है। तो जाहिर है शुरू में जोश वैसे भी ज्यादा होता है, बाद में वो कम होता चला जाता है, लेकिन इसके ऊपर हमारी एडवाइस यही रहेगी कि कोशिश यही करें कि लाइव क्लास अटेंड कर लें ताकि सवाल जवाब वगैरह में भी आप शामिल हो सकें, आप खुद भी सवाल पूछ सकें, और जो लाइव इल्म हासिल करने की वजह से कुछ और भी बातें यानी इंसान को मिलती हैं वो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको नहीं मिल सकेंगी। तो अपनी तरफ से कोशिश बिल्कुल करें, लेकिन फिर अगर आप मुमकिन है ही नहीं आपके लिए तो फिर जाहिर रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। इस इन सूरतों का क्या बैकग्राउंड है जी, अभी पहुंचेंगे इंशाल्लाह बैकग्राउंड पे, कंडा कहना भी हमने खाली खुलासे तफसीर पढ़ा है, ठीक है। आप बल्कि खुद से मुताला करके भी आए, उर्दू माशाल्लाह पढ़ सकते हैं सब, तो मारिफ मसाइल वगैरह का मुताला करके आए तो और भी ज्यादा आपके लिए मुफीद रहेगा इंशाल्लाह ये डिस्कशन, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।